नहीं, जवाद उल हसन काजमी, इसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, कहीं जनाब गुलजार नईमी साहब जमात अहले हरम की तरफ से, कहीं जनाब पीर सफदर गिलानी साहब, और इसी तरह दीगर जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से, ये सारे मिलकर इस गुलदस्ता को सजाने का मूजब हैं, और इनमें से कोई भी मुनाफिक नहीं है। ये वो लोग हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी एक दूसरे के साथ नबी के इश्क की बुनियाद पर हाथों में हाथ डालकर खड़े हैं। ये सोसाइटी में भी खड़े हैं, ये आस्थानों के ऊपर भी खड़े हैं, ये अवाम के अंदर भी खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी तकफीरियों के साथ खड़े नहीं होंगे इंशाअल्लाह। ये एक बात। मैं तीन सिर्फ क्वेश्चन, चूंकि मोहतरम वजीर साहब भी बैठे हैं, शायद उनके लिए भी ये एक इनपुट के तौर पे इंपॉर्टेंट हो। हमारे जहनों में ये सवाल आता है, चूंकि मद और सनाया जनाब रसूल अकरम ये हमारे बस की बात नहीं है, फिर उलमा हैं यहां तशरीफ रखते हैं। मैं अपने हिसाब से सिर्फ तीन नुकात। एक ये सवाल कि पाकिस्तान हमने हासिल किया, पूरे बर्रे सगीर में एक मूवमेंट चली, उस मूवमेंट के नतीजे में जो दूर दराज इलाके हैं, पाकिस्तान तो एक तरफ है, शुमाल है, जो साउथ है, दक्कन है, वो पूरे इलाके, मूवमेंट पूरे इलाके में चली, लेकिन उस मूवमेंट में बाइंडिंग फोर्स क्या थी, जिसे हम बाज़ औक़ात सीमेंटिंग पावर भी कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी जगह पर रेत मौजूद हो, बजरी मौजूद हो, इसी तरह पानी मौजूद हो, पत्थर मौजूद हो, लेकिन वो अपनी अलग अलग हैसियत में, रेत है, पानी है, बजरी है, उसकी अलग अलग हैसियत है, वो बुनियादी तौर पे कोई चीज नहीं है। लेकिन जब सीमेंट आ जाता है और ये एक खास तनासब से उनको मिलकर सीमेंटिंग पावर बना देता है, तो ये बनता है कंक्रीट। इसको तोड़ना, इसके ऊपर मुक्का मारना अपने लिए तकलीफ पहुंचाने का बायस होता है, इसको तोड़ना अब आसानी से मुमकिन नहीं होता। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि ये जो हमारी सीमेंट पावर थी, ये जो हमारी बाइंडिंग फोर्स थी, ये तो इस दूर दराज इलाकों में जिन्होंने अपने वालदैन की कब्रें छोड़नी थी और पाकिस्तान बनाना था, जिन्होंने कभी सारी जिंदगी में पाकिस्तान के एरिया में नहीं आना था, लेकिन पाकिस्तान की मूवमेंट का हिस्सा थे, किस बुनियाद पर हिस्सा थे? और जब ये बाइंडिंग फोर्स थी, तो फिर पाकिस्तान के अंदर हम इस तरीके से उस बाइंडिंग फोर्स के साथ इकट्ठे क्यों नहीं हैं? तो इस सवाल का एक जवाब और एक सलूशन देना चाहता हूं। बुनियादी बात ये थी कि ये बाइंडिंग फोर्स थी एक कलमे की बुनियाद पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम पाकिस्तान में रहने वाले उस वक्त शिया भी थे, कोई शियत नहीं आ गई, अहले सुन्नत भी थे, कोई नहीं अहले सुन्नत नहीं आ गए, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब थे। इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाली जो नस्ली या इलाकाई इकाइयां हैं वो भी मौजूद थी, साउथ के थे, बंगाली थे, पंजाबी थे, सारे जो है गिलगती बल्ती सब मौजूद थे। लेकिन हमारी तमाम हैसियतों के ऊपर ये दो हैसियतें गालिब आ गईं। एक हैसियत हमारी इन सारी इलाकाई हैसियतों पे गालिब आ गई, जबकि अभी नहीं बना था, वो पाकिस्तान था, उसका जोग्राफी और एक मुल्क था। और इन सब हैसियतों के ऊपर जो हैसियत गालिब आ गई, वो हमारा एक नबी का आशिक और एक नबी का मुहिब होते हुए इस्लाम के नाम पर इस सरजमीन का हसूल था। लिहाजा ये बाइंडिंग फोर्स बनी, और इसकी बुनियाद पे हमने सिर्फ करोड़ों हिंदुओं को शिकस्त नहीं दी। हिंदू आइडियोलॉजी की बात करूं, फर्द की बात नहीं कर रहा हूं, हमने उस वक्त की आलमी इंपीरियल पावर की, जिसकी सरजमीन पर सूरज गरूब नहीं होता था, उसको और उसकी साजिशों को शिकस्त नहीं दी। बल्कि दरअसल हमने ये बताया कि अगर हम इस बाइंडिंग फोर्स के ऊपर इकट्ठे हैं, जिसमें दो उनवान है, एक उनवान इस्लाम है और दूसरा इस्लाम के साथ पाकिस्तान है, तो हम इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा हदफ भी बड़ी से बड़ी ताकत के मुकाबले में खड़े होकर हासिल कर सकते। लिहाजा ये मालूम होना चाहिए, आज जो डिसइंटीग्रेशन हुई है, आज जो तफरके इजाद हुए हैं, खा वो मसलक की बुनियाद पे हैं या वो मसलन इलाकाइयत की बुनियाद पर हैं, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये बाय डिजाइन है। और अगर ये बाय डिजाइन है, अगर ये किया गया है, अगर वेस्ट ने और दीगर हमारे पाकिस्तान दुश्मन कुवतों ने यह किया है, तो आज की इस कॉन्फ्रेंस का एक अहद यह होना चाहिए, हम दुश्मन की इस साजिश के मुकाबले में खड़े हैं। हमारा एक बार फिर तारफ यह होगा, हम अहले तशय्यो हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम देवबंदी सब कुछ है, लेकिन नबी की उम्मती, नबी के आशिक हैं, पाकिस्तानी हैं, इन दो मसलों पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करने देंगे। बखुदा हमारे दरमियान वो वहदत आ जाएगी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान एटमी सलाहियत वाला दुनिया में आलम इस्लाम को लीड करने वाला मुल्क बनेगा। एक दूसरा नुकता सवाल यह है, चूंकि माशाल्लाह हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, और हमारे यहां यह सवाल आता है कि जी दहशतगर्दी क्यों अभी भी पनप रही है? यह पैरासाइट से दहशतगर्द, पैरासाइट खुद नहीं सरवाइव करता, किसी और के वजूद पे सरवाइव करता है। ये जरा देखेंगे किस वजूद पे सरवाइव कर रहे थे, इनकी पॉलिटिकल एक्सेसेस हैं, इनकी रिलीजियस एक्सेसेस हैं, इनकी इकोनॉमिकल एक्सेसेस हैं, जिसकी बुनियाद पे इनकी आइडियोलॉजिकल एक्सेसेस हैं, जिसकी बुनियाद पे ये पेनिट्रेट करते हैं। हम कानून बना लेंगे, ये मसला हल नहीं होगा जब तक ये रस्ते नहीं रोकेंगे, इनके ये रस्ते बंद करने पड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में ये बुनियादी चीजें लिखी हुई हैं, तकफीरियत के हवाले से चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की सरजमीन पर देखते हैं कि उस पर उसकी रूह से, ये किसी एक हुकूमत का मैटर नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान अभी इस गवर्नमेंट के दौर में नहीं बनाए, हमने उसके जनाजे उससे बहुत पहले उठते हुए देखे हैं यहां पाकिस्तान के गली कूचों के अंदर। लिहाजा अगर हमने दहशत गर्दी के अफरियत को अमली तौर पर रोकना है तो हमें मुसलसल कानून साजियों के चक्कर से निकलकर यह सोचना होगा कि बुनियादी सुकम कहां है। बुनियादी सुकम यह है जो इनके आइडियोलॉजिकल मराकज हैं उनका मुहासबा होना चाहिए, जो उनके इक्तसादी सपोर्टर हैं उनका मुहासबा होना चाहिए, जो उनके सियासी सपोर्टर हैं उनको कहीं काउंटर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की सरजमीन पर अगर हम इनकी सियासी एक्सेस बंद कर दें, अगर हम इनके आइडियोलॉजिकल एक्सेस बंद कर दें, अगर हम इनकी फाइनेंशियल एक्सेस बंद कर दें, और अगर हम इनको पाकिस्तान के अंदर वो फलने फूलने के लिए जो पैरासाइट को चाहिए होता है वो जमीन ही मुहैया नहीं करें, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे और पाकिस्तान शिया और सुन्नी की वहादत का और मोहब्बत का गहवारा बनकर रह जाएगा। इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तीसरी बात, यह सवाल कि अमूमन ये जो अभी कैरिकेचर मसल निकाले गए या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की एक कोशिश की गई, ये क्यों है? बाज़ लोग हम में से उठेंगे, कहेंगे जी इस वजह से है कि चूंकि डुअल स्टैंडर्ड्स है वेस्ट के। ये बात भी दुरुस्त है, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। आप इसी वेस्ट को कहें, इसी मैक्रोन और फ्रांस को कहें कि अपनी सरजमीन पर, और इसी बरतानिया को कहें जो पूरी दुनिया के अंदर चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का, लिबरलिज्म का, और दुनिया को ये कहते हैं कि हम जो है ना राइट टू डिसएग्री देना चाहते हैं, आओ अपनी सरजमीन पर हमारे एक पीएचडी स्कॉलर को इस ये जो यहूदियों ने एक पूरा एक बनाया मिथ बनाई कि हमारा होलोकास्ट हुआ है, इस होलोकास्ट पे जस्ट रिसर्च करने की एक पीएचडी स्कॉलर को इजाजत दे दो, तुम्हारे मुंह से ये जो नकाब है ये उतर जाएगा। यहां इन इलाकों के, इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बाज ममालक में 5 साल तक सजा है अगर आपने जस्ट होलोकास्ट के ऊपर रिसर्च करने की भी कोशिश की। तो आप तो तहकीक के लिए जवाब मैदान नहीं देते हो, आप कहां आजादी इजहार राय के कायल हो? और आजादी इजहार राय किसके बारे में, ये स्लोगन किसके बारे में? नबी अकरम के बारे में तुम इस्तेमाल करते हो। ये ऐसे ही है जैसे उस दौर में जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने के लिए मुशरकीन भी और कुफार भी प्रोपेगेंडा मशीन चलाते थे कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर नबाशिद, के पैगंबर साहिर हैं, काहिन हैं, जो इनके करीब होगा मसलन वो सहरजदा हो जाएगा, ताकि असल हदफ क्या था, पैगंबर से दूर किया जाए, पैगंबर के उस पैगाम से दूर किया जाए, और उससे दूर करके वो अपने मजबूत मकासद में कामयाब हो सकते थे। यानी उन्हें ये मालूम था जो पैगंबर की सोहबत में चला जाएगा, जो इस्लाम के नूरानी चेहरे को जाकर देख लेगा, वो इस्लाम के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा, और जो इस्लाम के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा वो नबी की महफिल से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर उठेगा। लिहाजा रोकने का तरीका ही है, इन्हें नबी के करीब ना आने दो। आज पूरी आज मगरबी दुनिया अपने बदतरीन तहजीबी इस खलफशार से दो चार है, और उन्हें अपना फ्यूचर इस लिहाज से मखदूश नजर आ रहा है। उन्हें पता है कि दुनिया के अंदर जो अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है वो बहरहाल इस्लाम है, वो मुक्तबे मोहम्मद वाले मोहम्मद है, लिहाजा वो उसको रोकना चाहते हैं। लिहाजा उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ माइक जैसे मोक एक्सरसाइजेज होती हैं, ये तालिबानाइजेशन, ये दहशतगर्दी, ये इसी तरीके से अलकायदा, इसी तरीके से उन्होंने मसलन मुख्तलिफ ग्रोह दाइश अशबाब और इसी तरीके से दीगर ग्रोह तश्कील दिए ताकि इस्लाम का खूबसूरत चेहरा मसख हो और लोग इस्लाम के करीब ना आ सके। बखुदा अगर हम इस्लाम का वो पाकीजा चेहरा जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, जिसकी तरवीज इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने की, जिसमें जानवरों पर भी जुल्म नहीं किया जा सकता है, जिसमें दुश्मन पर कब्जा करके उसकी औरतों को तजलील नहीं की जा सकती है, जिसमें ये जो एनवायरमेंटल चीजें उनका भी एहसास रखा गया है, जिसमें आप फसलों को भी तबाह नहीं कर सकते हैं, जिसमें जानवरों का मसला भी नहीं कर सकते हैं, अगर इस इस्लाम को जो पाकीजगी का, मोहब्बत का, वहदत का, अखुवत का दीन है, इसका ये खूबसूरत चेहरा हम पेश करने में कामयाब हो जाएं, बखुदा आलम कुफर के मुकाबले में इस्लाम उस जगह खड़ा हो जाएगा जैसे सूरज निसफ लैलो सूरज जो है अपनी ओज के ऊपर होता है और उसके जरिए से पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम की पाको पाकीजा किरणें होंगी, और फिर अल्लाह का यह कौल सादिक होगा कि यह इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आने के लिए है, और ये आइडियोलॉजी है इसलिए ताकि इस कायनात के ऊपर नाफिज हो के इस अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का निजाम नाफिज हो सके। लिहाजा उसके मुकाबले में, वेस्ट की इस साजिश के मुकाबले में हमें आइडियोलॉजिकल खड़ा होना, इसमें यूनिवर्सिटीज के अंदर, इदारों के अंदर हमें इस ऐसी चीजें राइज करनी होगी कि जिसके नतीजे में हम इसका स्ट्रेटजिक तदारक कर सकें। और आज का ये प्रोग्राम भी मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, ये एक स्ट्रेटजिक इवेंट है, ये कोई आम इवेंट नहीं है। अगरचे ये मिलाद भी है, अगरचे ये मदव सनाए पे अमर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, लेकिन ये स्ट्रेटजिक इवेंट है। दुश्मन ने ये मैसेज दिया, हम पाकिस्तान में तफरका की बुनियाद पर तकसीम करेंगे और पाकिस्तान की इस तकसीम से अपने लिए फायदा उठाएंगे। आपने यहां बैठकर ये मैसेज दिया कि नबी के इश्क में हम सारे एक हैं और हम हाथों में हाथ डालकर ये इजहार करेंगे, तुम हमें मसलक की बुनियादों पर तकसीम नहीं कर सकोगे और हम एक नई आइडियोलॉजी लेके यहां से जाएंगे। हम एक दूसरे के लिए ये तौजीह करते हैं कि हमारे अहले सुन्नत भाई अगर बाज हस्तियों से मोहब्बत करते हैं तो उसकी बुनियाद वो हस्तियां नहीं है बल्कि इश्क रसूल है। उनका यह ख्याल है कि ये नबी पाक से ज्यादा करीब है, नबी पाक से इनकी ज्यादा कुर्बत है। इसी तरीके से अहले तशय्यो अगर बाज हस्तियों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उसका उनवान यह है कि उनके ख्याल में वो नबी के ज्यादा करीब और आशिक हैं। तो असल महवर है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। लिहाजा अगर हम इश्क मुस्तफा पर इकट्ठे हो जाएंगे, हम एक दूसरे को राइट टू डिसएग्री भी देंगे, किसी को दुख किसी की तोहीन का हक नहीं देंगे और हाथों में हाथ डालकर इस्लाम का भी दिफा करेंगे, इस वतन का भी दिफा करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।